ओम शांति। इस ब्राह्मण जीवन में जैसे पवित्रता का महत्व है, उसी तरह से वैराग्य का भी उतना महत्व है। जब तक वैराग्य हमारा तीव्र गति से बढ़ता नहीं है, तब तक हमारे पुरुषार्थ की रफ्तार भी मंद पड़ी रहती है, धीमी पड़ी रहती है। तो हम देख रहे हैं इतने दिनों से वैराग्य की सीरीज जो चल रही है, अलग अलग दृष्टिकोण से हमने वैराग्य को देखा। देह से वैराग्य, देह के संबंधों से वैराग्य, देह के संस्कारों से वैराग्य, साधनों से वैराग्य। तो आज हम देखेंगे देह के स्थान, देह के, देह की भाषा और देह के धर्म। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे आत्मा की कहीं ना कहीं रगे जुटी हुई है, और जैसे जैसे हम इस ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ते जाते हैं, माया भी सूक्ष्म रूप से अपना आक्रमण करती है। बहुत सारी कमी कमजोरी का हमको पता चलता कि अभी भी बहुत कुछ बाकी करना है। तो वैराग्य का फाउंडेशन मजबूत हो, उसके बारे में हमको अधिक से अधिक वैराग्य के ऊपर कहां कहां हमारी रगें जुटी हुई हैं स्वयं ही नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि वैराग्य ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। पुरुषार्थ को तीव्र करने एक सहज साधन है, वैराग्य एक नींव है, ये आगे बढ़ने का एक स्रोत है। तो देह का स्थान, क्योंकि जिस स्थान पर हमारा जन्म होता है, इस देह का जन्म होता है, उस स्थान से भी कहीं ना कहीं आत्मा की अनेक प्रकार की तारें जुड़ी रहती हैं, सहज रूप से बोलती नहीं है। अगर कोई हमें उस स्थान को कोई व्यक्ति मिल जाता है, तो हमारी मनोदशा, हमारे मन के भाव हाव-भाव, हमारी बोल या हमारी एक्टिविटी, उसको देखने से थोड़ा परिवर्तन हो जाती है। अगर कोई दूसरे स्टेट का या दूसरी कंट्री का या कोई व्यक्ति मिलता है, उसकी अपेक्षा में जिस स्थान से हम जन्मे हैं, उस स्थान का व्यक्ति मिले, तो बहुत अंतर हो जाता है। फिर उसी की भाषा हम बोलने लगेंगे, वो उस स्थान की बातों के बारे में चिंतन करना शुरू करेंगे, या उस भूमि पर जहां हमारा जन्म हुआ है, वो ये पुरानी बचपन की यादें हम उनको ताजा करना शुरू कर देंगे, या वहां का खान पान कैसा है, वहां क्या चीज चल रही है, वहां के संबंधों के बारे में, अपनी विशेषताओं के बारे में, है जी, वहां की विशेषताओं के बारे में, उस एनवायरमेंट में या वहां क्या क्या चल रहा है, तो सारी जैसे एक गड़े मुर्दे के समान हम उनको उखाड़ना शुरू कर देते हैं। बीती को चित्त नहीं लगने देते हैं, बीती के साथ चित्त, हाँ, चिंतन कर, बीती का चिंतन करने लगते हैं। तो उन चीजों से मुक्ति पाना भी एक साधना है। इसलिए सन्यासी लोग 3 दिन से कहीं ठहरते नहीं थे, क्योंकि पानी बहता ही भला होता है। लेकिन भले हम उस स्थान से निकले हैं या उस स्थान में रहते भी हैं, लेकिन वहां से भी हमारा वैराग्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाना चाहिए, क्योंकि रग रग में वो चीजें समाई हुई हैं और उनको भूलना सहज नहीं है। क्योंकि इस संसार में हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो सारा दैहिक स्तर पर है, और बाबा कहते हैं ज्ञान तो टोटल डिफरेंट है। परसों की साकार मुरली में था, ये ज्ञान टोटल डिफरेंट है, ये ज्ञान तो हमको इस संसार से ऊपर ले जाने के लिए है, हमारी आत्मिक साधना के लिए है, हमारा जो अध्यात्म का मार्ग है उस पर चलने के लिए, आत्मा में जैसे उमंग उत्साह के पंख लग जाएं, तो उसके लिए इस वैराग्य की भूमि को हमें बहुत उपजाऊ बनाना होगा। क्योंकि हमारे खुद ऐसे संकल्प हैं, अनेक प्रकार के जो पुराने स्वभाव संस्कार के संकल्प हैं, जिन संकल्पों के हमने बहुत सारी दीवारें बना के रखी हैं, और मन उन दीवारों के अंदर ही रहता है, फिर उनसे बाहर नहीं उड़ पाता है। खुद ही वो हमारे पुरुषार्थ का रोड़ा बन जाती हैं वो दीवारें। तो देह के जितने भी स्थान है, चाहे वो हमारा कर्म क्षेत्र है, चाहे वो कोई ऑफिस है, चाहे वो हमारा लौकिक घर है, या चाहे वो हमारा अध्यात्म का स्थल है, या जहां हम साधना करते हैं वो है, क्योंकि इन सब चीजों से ऊपर उठकर हमको वहां पहुंचना है जहां हमारा असली घर है। इसलिए बाबा ने कल भी कहा था ना मुरली में कि बाबा बच्चों को याद करते हैं, जो बच्चे मुझे याद करते हैं उनको भी याद करता हूं, और जो बच्चे मुझे याद नहीं करते उनको भी याद करता हूं। तो जो बच्चे मुझे याद नहीं करते उनको भी याद करता हूं, तो क्यों याद करता हूं उनको? ले जाना है सबको, छोड़ना नहीं है। बाबा ने कल कहा मैं बच्चों को डिस्ट्रॉय थोड़ा करूंगा, बाप विनाश नहीं कराते, लेकिन वो छोड़ता भी नहीं। बाबा ने कहा था मैं तुम्हारे शरीर को खा करके ले जाऊंगा। तो बाबा समय समय पर हम सबको इस संसार से वैराग्य दिलाते हैं कि कैसे हमारा मन अपने घर में लगा रहे, कैसे हमारे मन की तार निरंतर जुटी रहे। उसके लिए बाबा अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं, लेकिन प्राय देखा जाता है जिस स्थान पर हम रहते हैं, चाहे वो कमरा है, चाहे वो ऑफिस है, या कर्म क्षेत्र है, उससे हमारा लगाव दिन प्रतिदिन बढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि वहां हमारा लगाव कम से कम होता जाना चाहिए। और वहां लगाव बढ़ता क्यों है? क्योंकि उस स्थान पर बहुत सारी चीजें कुछ ऐसी होती हैं जो हमारे पुराने जीवन से संबंधित होती हैं, जो हमारी पुरानी आदतें होती हैं, कोई संग्रह वृत्ति की आदत है, या उस स्थान को अपने पुरानी स्मृतियों, पुरानी आदतों के अनुसार उसी तरह हम साजो सजावट करते हैं, या उस स्थान की स्वच्छता की बजाय हम घर गृहस्थ की तरह ही यूज कर रहे हैं उस चीज को। तो हमको स्थान पर देखना पड़ेगा कि उस स्थान पर हमारा अटैचमेंट बढ़े ना दिन प्रतिदिन। नहीं तो कई बार देखा जाता है जहां हम बैठते हैं, अगर वहां कोई दूसरा व्यक्ति बैठ जाता है तो भी हमारे संकल्प तो नहीं चलना शुरू हो जाते हैं, वो भी जांच करने का विषय है। अगर कोई स्थान पर उस स्थान पर बैठ जाता है, चाहे वो साधना स्थल है, तो भी कोई कोई तो विचलित होना शुरू हो जाते हैं। तो हमको देखना पड़ेगा उस स्थान से भी हमारा लगाव तो नहीं है। इसलिए हमारी साधना तन की तो है, तन तो अपने आप ही सद जाएगा, लेकिन जब तक हमने मन को तैयार नहीं किया, मन की साधना के सूत्र नहीं सीखे हमने, मन को सहज रूप से नियंत्रण करने के हमने तरीके नहीं सीखे, तो हमारा मन विचलित होता रहेगा। तो वास्तव में बाबा जो हमको ज्ञान देते हैं, ये सारा ज्ञान इस संसार से हमको उपराम करने के लिए है, इस संसार से हमको न्यारा बनाने के लिए है, इस संसार से हमारा नाता तोड़ने के लिए है। इसलिए बाबा कहते सारे ज्ञान का सार यही है, देह के सर्वस्वता धर्मों को भूल मामे कमियात करो। तो ये ज्ञान सचमुच टोटली डिफरेंट है। जब तक हम इस ज्ञान की गहराई में नहीं जाते, तब तक हमारी वैराग्य का बीज अंकुरित नहीं होता है। इस ज्ञान को ही बार बार पढ़ने से थोड़ा थोड़ा वैराग्य का बीज अंकुरित होने लगेगा। नहीं तो अगर हम ऊपर से इस ज्ञान को पढ़ते हैं तो वो फिर वैराग्य हमारा धधकता हुआ वैराग्य नहीं होता है, कहीं ना कहीं उसकी जो ज्वाला है वो प्रज्वलित नहीं होती है। तो इस ज्ञान की गहराई में जाने के लिए स्वयं को इसमें देना पड़ेगा, अलग अलग विधियों से कैसे हम इस ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करें, ताकि ज्ञान हमारे निजी संस्कार बन जाए। संडे की मुरली में था ना, जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तुम बच्चे भी ज्ञान स्वरूप हो। लेकिन एक है वो हमको बौद्धिक स्तर पर याद रहता है, दूसरा है वो हमारे कर्मेंद्र में समा जाए, वो हमारी नेचुरल नेचर बन जाए, वो हमारी आदत बन जाए, हमारी संस्कार बन जाए, वैसी हमारी टेव पड़ जाए। अर्थात जैसे था ना उसी मुरली में था कि जैसे बाप वैसे मैं, ये स्मृति का स्लोगन ही वरदान के रूप में तुम बच्चों को अनुभव कराता है। तो क्या सचमुच वो हमारे निजी संस्कार बनते जा रहे हैं? जो बाप की सोच, जो बाप के कर्म, जो बाप के संकल्प, वो तुम बच्चों के संकल्प। तो दिन प्रतिदिन हमें स्वयं के ऊपर ही नजर रखने की जरूरत है, नहीं तो हमारा ना स्थान से वैराग्य होगा, ना भाषा से वैराग्य होगा, ना देह के धर्मों से वैराग्य होगा। और संसार में हम देखते हैं जो भी उत्पात होता है वो सब इन्हीं चीजों से होता है, क्योंकि हम उन दीवारों के अंदर जी रहे हैं, चाहे वो स्थान की हैं, चाहे वो भाषा की हैं, चाहे वो देह के धर्मों की हैं, उन्हीं के कारण संसार की जो दिन प्रतिदिन दशा खराब होती जा रही है। तो हमको तो बाबा टोटल डिफरेंट ज्ञान देते हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ को इस ज्ञान के अनुकूल अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करें। तो सबसे पहले हमको देखना है कि इस देह के स्थान से जहां हम रहते हैं उससे कैसे वैराग्य आए। तो कुछ एक ऊपर उसके ऊपर हमको स्वयं ही चिंतन करने की जरूरत है। हमें हमेशा यह स्मृति रखनी चाहिए कि हम इस संसार में मेहमान हैं। तो मेहमान का कहीं लगाव नहीं होता है, मेहमान का हमेशा जो मन है उसका वो अपने घर में ही रहता है। कहां भी हम जाते हैं तो उस घर में हम टेम्परेरी होते हैं। हाँ, उस मेहमान बनकर उस घर में जाते तो सबके साथ प्यार तो होता है, लेकिन तुरंत डिटैच हो जाते हैं, क्योंकि हमको पता होता है कि हमको वापस तो अपने घर में लौटना है। उसी तरह से हम भी संसार में मेहमान हैं, टेम्परेरी हैं, परमानेंट नहीं है। असली घर तो हम सब आत्माओं का ऊपर है। तो जैसे मेहमान का सबसे प्यार है, तो है तो हमारा सबसे प्यार है, लेकिन हम न्यारे भी हैं, क्योंकि हमको सब पता है कि हमको भी वापस अपने घर लौटना है, घर वापसी का समय है। तो मेहमान वहां की चीज को भी अपनी चीज नहीं समझता है। उसी तरह से इस संसार में भी है, जो स्थान है, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे वो मकान है, दुकान है, या जिस स्थान पर हम रहते हैं, वो तो हमको केवल इस समय हमें श्रेष्ठ श्रेष्ठ साधना के लिए मिला है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ पद की प्राप्ति के लिए मिला है, या दुआओं का खाता जमा करने के लिए मिला है। तो हमें उस स्थान को भी सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हुए वहां भी हमको उस स्थान से उपराम रहना है, न्यारा रहना है, उस स्थान से भी वैराग्य बढ़ेगा। तो हमको ये निरंतर स्मृति में रखने की जरूरत है कि हम इस संसार में मेहमान हैं। दूसरी बात है, हम सब मुसाफिर हैं, यहां यात्रा पर निकले हुए हैं, इसलिए कहते हैं दुनिया रहन बसेरा ना घर मेरा ना घर तेरा है। जैसे हम यहां बैठे हैं, इस हॉल में बैठे हैं, तो इस हॉल में हमारे में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो बनाते समय यहां था, इस हॉल में है कोई, कोई भी नहीं है। बनाने वाले कोई और ही थे, वो भी इधर नहीं है, लेकिन हम भी ऐसे कल को इधर नहीं होंगे। तो अगर हम इसी को अपना समझ के बैठ जाएं तो हमको क्या कहा जाएगा। तो हम तो मुसाफिरी पर निकले हुए हैं, साइड सीन कर रहे हैं। साइड सीन पर व्यक्ति एक ही साइड सीन पर नहीं ठहर जाता है, वो अलग अलग से दृश्य देखता रहता है, तभी उसको आनंद आता है। उसी तरह से हम इस सृष्टि मंच के ऊपर मुसाफिर हैं। मुसाफिरी करते करते जहां भी हम ठहरे हैं वहां हमारा थोड़ा हिसाब किताब है, उन आत्माओं के साथ हमारे कुछ लेन देन है, हिसाब किताब है, इसलिए हम रुके हुए हैं। तो उस साइड सीन का हमको अगर आनंद लेना है तो हमको वहां भी न्यारा होकर रहना पड़ेगा। हमको उसमें भी स्मृति लेनी चाहिए कि हमको इस स्थान को छोड़कर अगला स्थान भी और देखना है। अगर हम उसी स्थान पर ठहर जाएं, उसी स्थान को अपना स्थान मानकर समझ जाएं, तो दूसरे तो हमारी टांग खींचेंगे खींचेंगे। तो ये रैन बसेरा है, हम थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी है, मुसाफिर है, यात्री है, और यात्री को यात्रा करने में आनंद आता है, वो एक जगह रुक नहीं जाता है। तो हम इस मुसाफिरी का भी आनंद लें। हमको ये हमेशा निरंतर स्मृति बनी रहनी चाहिए कि हम मुसाफिर हैं, यात्री हैं, यात्रा का आनंद लेना है। और यात्रा में करते बहुत सारी बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है, कहीं भारी तो नहीं है, बोझ ज़्यादा तो नहीं है, अगर बोझ होगा तो भी हम चल नहीं पाएंगे। और उस यात्रा का आनंद लेने के लिए हमारा जो भोजन है, हमारे जिस संकल्पों का, आत्मा का, क्योंकि सूक्ष्म यात्रा है, तो कौन से संकल्पों का भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं ताकि उन संकल्पों से हम हल्के रहें। जैसे संडे के मूल्य में था कि जैसे बाप हल्का है, बिंदु है, तुम बच्चे भी हल्के हो, होली का रहस्य बताया था कि होली में हल्के भी हो जाते हैं। तो उसी तरह भी हम सब बातों से हल्के होते हैं जाएं धीरे धीरे, तो हम यात्रा का आनंद ले सकेंगे। तो हम इस संसार में मुसाफिर हैं, यात्री हैं। तीसरी बात है, हम यहाँ अवतरित हैं टेम्परेरी। कौन से कर्म करने के लिए हम आत्मा का अवतरण हुआ है, वो हमको अगर निरंतर स्मृति में रहता है तो हम अपने कर्म के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी निष्ठापूर्वक उसका निर्वहन करते रहेंगे, तो भावा की मदद का भी अनुभव होगा। और हमको विस्मृति हो जाती है कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, तो फिर वही हमारी पुरानी स्मृतियां, पुरानी यादें, पुराने कर्म, पुराने स्वभाव संस्कार की जंजीरें हमको पकड़ के रखेंगी, हमको उड़ने नहीं देंगी। इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा उमंग उत्साह के पंख, ज्ञान के योग के पंख हमेशा में लगे रहने चाहिए। तो हमेशा अगर हम निरंतर स्मृति रखें कि हम अवतरित आत्माएं हैं। अवतार का जन्म किस लिए होता है, किस लिए अवतरित होते हैं? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, अनेक आत्माओं का परमात्मा संदेश देने के लिए, अनेक आत्माओं को परमात्मा से जोड़ने के लिए, उनके दुख दर्द दूर करने के लिए, उनको सुख शांति का रास्ता बताने के लिए, उनके जीवन में खुशी भरने के लिए। तो क्या हम उस स्मृति में रहते हैं कि सचमुच हम अवतरित हैं? अगर हम ये समझेंगे कि सचमुच हम अवतरित हैं तो भी हमारा उस स्थान से लगाव नहीं होगा। अगर नहीं, हमको विस्मृति है, तो हम उस स्थान के प्रति हमारा दिन प्रतिदिन मोह बढ़ता जाएगा, दिन प्रतिदिन लगाव बढ़ता जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा ना, कल के संडे की मुरली में था कि अपनी संपूर्णता के आईने में देखो कहां कहां लगाव है, अगर लगाव है तो उसको चेक करो और फिर उससे मुक्त बनो। तो हमको स्वयं के स्तर पर यह भी देखना पड़ेगा, क्या हमको ये स्मृति रहती है कि हम अवतरित आत्माएं हैं। नेक्स्ट है, हमको स्मृति में रखना पड़ेगा कि हम पूर्वज हैं सृष्टि के, है ना। और हमको पता, पूर्वज को पता होता है कि हमको छोड़ के जाना ही है, आगे संभालने वाले बहुत हैं दूसरे, पीछे उनकी वंशावली जो होती है। तो उसी तरह से हम इस यज्ञ की मूर्तियों को देखते हैं, ब्रह्मा बाबा से लेकर अभी तक जितने भी हैं, दादियां हैं, सब धीरे धीरे तो जा रहे हैं ना, कोई किसी को पकड़ थोड़ा रख रहा है, सबको पता छोड़ के तो जाना ही है। तो अगर हमको स्मृति में रहता है तो हम इस ब्राह्मण जीवन का आनंद ले पाएंगे। अगर हम इसी को अपना समझ के बैठ जाए, जो हमारा लक्ष्य है उसके प्रति हमारी नजर ना होने की बजाय इन हद की बातों में आ जाए, ये मेरा है, ये तेरा है, तो फिर हम भी इस जीवन का आनंद नहीं ले सकेंगे और हमारा उस स्थान से दिन प्रतिदिन लगाव बढ़ता जाएगा। तो ये कुछ एक बातें हैं जो स्थान के प्रति हमारे वैराग्य को प्रज्वलित करने के लिए हम अगर हम स्मृति में रखते हैं तो निरंतर हमारा पुरुषार्थ की स्पीड जो है वो बढ़ती जाएगी। इसी तरह से हमारा जो भाषा है, भाषा से भी कैसे हमारा वैराग्य हो, क्योंकि भाषा भी बहुत मायने रखती है। भाषा एक तो होती क्षेत्रीय भाषा, दूसरी और सूक्ष्म भाषाएं भी हैं। पहले तो हमको क्षेत्रीय भाषा में भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम जैसे हम बेहद के संगठन में आते हैं और अगर हमको हिंदी आती है और हम उसको यूज करने के बजाय अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में बोलते रहते हैं, तो हमारा जो ध्यान है, हमारा जो मन है, वो उसी क्षेत्र के इर्द गिर्द घूमता रहता है। वो हमारे संस्कार जाते नहीं है, जो हमारा परिवर्तन होना चाहिए, जो हमारे पुरुषार्थ में निखार आना चाहिए, वो आता नहीं है, क्योंकि हमने उसी भाषा को पकड़ के रखा हुआ है। तो एक तो है क्षेत्रीय भाषा, जिसको हम अपना मान के बैठ गए हैं। जैसे बाबा कहते थे अगर सिंधी बोली तो पापड़ बंद, तो उसी तरह से अगर हम इस ब्राह्मण संसार में आते हैं तो अगर उन भाषाओं को हमने पकड़ के रखा हुआ है तो भी बार बार हमारी लगे लौकिक की तरफ जाती जाएंगी। तो हमको ये अगर ये भाषा आती है, बाबा की भाषा हिंदी भाषा, अगर इसको हम सीखे तो अच्छा है। दूसरी बात है, एक है देह की भाषा। देह की भाषा अर्थात वो बोल जो हमारे बोल सुनते ही अगले को देह याद आ रही है। हमारे बोल सुनते ही अगर कोई परमात्मा से विमुख हो रहा है, या हमारी वो भाषा जो पुराने संसार की भाषा है, पुराने संसार की अर्थात अगर हम कहीं आपस में मिलते हैं तो हम कौन सी चर्चा कर रहे हैं, कहीं वो पुरानी दुनिया की फिल्मी जगत की चर्चा तो नहीं कर रहे हैं, कहीं वो देह के संबंधों की चर्चा तो नहीं कर रहे हैं, कहीं वो लौकिक की चर्चा तो नहीं कर रहे हैं, कहीं वो बिजनेस की चर्चा तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमने देखा सेंटरों पर जो यज्ञ के नियम मर्यादाएं हैं उनमें एक पॉइंट ये भी है कि सेंटर पर कोई भी बिजनेस की लेन देन नहीं करनी है, लेकिन प्राय देखा जाता है इस बात में बहुत हल्के हो जाते हैं, वहीं सेंटर पर चालू हो जाता है। तो जिस स्थान पर हम जो चीज लेने आए हैं उसी स्थान के अनुकूल हमारी भाषा हो तो हमारे जीवन में परिवर्तन संभव होता है। अगर उसके अनुकूल हमारी भाषा नहीं है, हमारे व्यवहार नहीं है, तो हमारा परिवर्तन नहीं होता, बल्कि और ही हम दूसरे लोगों को लौकिकता की ओर घसीट के ले जाते हैं। बल्कि हमारा पुरुषार्थ तो है, हमारा कर्तव्य है कि संसार को लौकिक से अलौकिकता की ओर लेके जाना, लेकिन उस स्थान पर भी हम उस पुराने जगत की बातों को पकड़ के रखा हुआ है तो हम उनको भी अलौकिकता से की बजाय लौकिकता की ओर ले जा रहे हैं। तो हमको सूक्ष्म रूप से देखना कि हमारे जो बोल है, क्योंकि ये जो है वास्तव में ज्ञान तो भाषा से भी ऊपर के भाषणा का ज्ञान है ये, तो हमारे से कौन सी भाषणा आ रही है, क्या जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो हम साधना कर रहे हैं, उस साधना की भावना से उस आत्मा को हम लाभान्वित कर रहे हैं, या फिर दूसरे ही पहले वाली बातें हैं। और अगर हम उसको लाभान्वित करने की बजाय उसी संसार से जोड़कर रखते हैं तो वो आत्मा भी सामने उनमें परिवर्तन नहीं आता, और फिर लंबे समय से चलने के बाद धीरे 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 फिर उदासी आना शुरू होती है, क्योंकि परिवर्तन तो हो ही नहीं रहा है। कोई 10 साल से ज्ञान में चल रहा है, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, लेकिन देखते हैं 10-15 साल के बाद भी अगर हमारे में वो परिवर्तन नहीं आता है तो सामने वाले भी सोचता है कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो यहां भी ठीक नहीं है। इसलिए ज्ञान का, बाबा कहते ज्ञान का तंत्र मैं तुमको सार सुनाता हूं आज की मुरली में। तो इस ज्ञान के सार को क्या सचमुच हम अपने अंदर में आत्मसात कर रहे हैं, अपने ऊपर उसकी नजर रख रहे हैं? तो हमारा कुछ ऐसे चाल चलन, बोल व्यवहार, या हमारे कर्म, या हमारे संकल्प कुछ ऐसा ना हो जो बल्कि हम ही दूर जा रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी लेकर तो नहीं जा रहे हैं। तो हम कोई भी ध्यान रखने की जरूरत है। इसलिए हम कहते हैं कि पुरुषार्थ भले थोड़ा करो, लेकिन उस पुरुषार्थ का रिजल्ट निकलना चाहिए। उस पुरुषार्थ से हमको आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए, आत्मसंतोष होना चाहिए, नहीं तो आगे दौड़ पीछे छोड़, थोड़ा आगे दौड़ पीछे छोड़। वैसे वो उस नॉर्थ साइड में छोड़ छोड़ कहते हैं जी, तो इसलिए आगे दौड़ पीछे छोड़, ऐसा वाला पुरुषार्थ ना हो जाए। तो हमारा उसका रिजल्ट उसमें तंत होना चाहिए, सार होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम एक एग्जाम्पल हो, पूर्वज हो, तो हमको भाषा भी देखनी है कि भाषा के ऊपर भी हमारा नियंत्रण हो, काबू हो। तो भाषा अर्थात जो भी हमारे मुख से शब्द निकल रहे हैं, वो शब्द हम, हमारे शब्द भी दूसरे को शब्दों से परे ले जाएं। जैसे था ना मुरली में एक साकार अव्यक्त वाणी में था कि आज आवाज की दुनिया से दूर रहने वाले बाप आवाज की दुनिया में आए हैं तुम बच्चों को आवाज से परे ले जाने के लिए, मुरली की स्टार्टिंग थी ऐसे। तो सचमुच हमारी भी आवाज, हमारे शब्द ऐसे हैं जो किसी को आवाज से परे ले जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, या किसी को आवाज मिलाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो भी हमको ये देखने की जरूरत है। तीसरा है फिर देह के धर्मों से हमारा वैराग्य कैसे बढ़े। तो देह के धर्म प्राय देखा जाता है संसार में, अगर आज लड़ाई झगड़ा है तो 90% लड़ाई झगड़ा देह के धर्मों पर ही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, स्कूलों में तो हमको पढ़ाया जाता था आपस में भाई भाई, लेकिन हम भी सोचा करते थे कि भाई भाई हैं तो ये फिर लड़ाई झगड़ा क्यों है। तो ये तो वास्तविकता था, हमको अब परिचय चलता है कि किस रूप में आत्मा रूप में भाई भाई हैं। और संडे की मुरली में भी के ऊपर एक पॉइंट था, कौन सा था संडे की मुरली में था, कि जब तुम ये बन जाते हो तो वो भी ये बन जाते हैं, कौन सा था? बाबा ने कहा था कि जब तुम आत्मा आत्मा भाई भाई समझते हो तो वो भी दादा पोतरा एक समान हो जाते हैं, चाहे वो दादा है चाहे वो पोतरा है। तो हमारा ही, हमारे यहाँ का जो ज्ञान है उस ज्ञान का संसार कैसे उसका अनुसरण कर रहा है। तो बाबा हमको कितने सहज तरीके से इस ज्ञान को समझाने के लिए अनेक प्रकार की युक्तियां बताते हैं ताकि हमारा पुरुषार्थ निरंतर दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। तो हमको ये देखना है कि कहाँ कहाँ हमारा वैराग्य बढ़ता जाए ताकि जिन चीजों से हम जकड़े पड़े हैं उन चीजों से हमारी मुक्ति आसानी से हो सके। नेक्स्ट है हमको ये भी समझना है कि हम इस संसार में किराएदार हैं। तो जिस स्थान पर रहते हैं वहां उसका लगाव नहीं होता, उसको पता किराया चुकाना है, तो हम भी किराया कौन सा चुका रहे हैं इधर? पुराने कर्मों का। रावण के बड़े से बड़े ग्राहक थे ना, वो भी छोड़ता थोड़ा नहीं है। तो हम यहां इस संसार में किराएदार हैं, उसका भी लगाव नहीं होता है, उसको पता है मकान मेरा नहीं है। तो हमको भी ये अमानत है भगवान की, ये देह भी एक तो स्थान है ना, इस स्थान में हम आत्माएं रह रही हैं, तो उससे एक लौकिक स्थान से लगाव वैराग्य चाहिए, लगाव मुक्त होना चाहिए। दूसरा ये भी एक स्थान है जिस स्थान में हम रहते हैं, देह रूपी घर है, तो इससे हमारा भी वैराग्य चाहिए। तो हमको हमेशा समझना है कि ये प्रभु की अमानत है, आत्मा इस संसार में, इस देह में किराए पर रह रही हूं, किराएदार कब्जा कर लेते हैं। वही तो कब्जा कर लिया हुआ ना, इसलिए तो बाबा छुड़ाना चाहते हैं। बाबा कहते हैं प्रभु की अमानत है और इसने तो इसको तुमने अपना समझ के रख लिया हुआ है, तो ये अमानत है। अमानत में ख्यानत नहीं करना, अर्थात जो भी, चाहे हम लौकिक में रहते हैं, चाहे हम अलौकिक या सेंटर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, लेकिन जब एक बार भगवान को हमने जीवन दे दिया है तो ये जीवन, उस जीवन में समय है, चाहे चाहे हमारे विचार हैं, संकल्प हैं, बोल हैं, कर्म हैं, उसके प्रति हम कितना उसको समर्पण भाव से यूज कर रहे हैं। बाबा कहते हैं घर को घर नहीं समझो, घर भी क्या है, सेवा केंद्र है। वो तो आपको एक जिज्ञासु मिले हुए घर में, जो वो स्टूडेंट हैं, भले वो ज्ञान में चलते हैं या नहीं चलते हैं, लेकिन उनको भी अनुभव कराने का एक सुनहरा हमको अवसर मिला हुआ है, क्योंकि सारे कल्प की यादगार अब बन रही है। तो किराएदार भी हम ऐसे रहे उस संसार में कि जैसे मकान मेरा नहीं है, ये तो हमको टेम्परेरी अमानत है, प्रभु की अमानत है, क्योंकि इस देह में रहते हमको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करने हैं, इस देह में रहते हमको इस देह को छोड़ना है, इस देह में रहते हुए औरों को भी, आज ही बाबा ने कहा ना, तुमको टीचर बना, उनको औरों को भी पढ़ाना है, औरों को भी पढ़ाना नहीं है, मंत्र देना है, वशीकरण मंत्र देने की तुम्हारी ड्यूटी है। तो क्या सचमुच हम इस देह रूपी स्थान में जो रह के तो वो वाले कर्म कर रहे हैं, दूसरों को वो मंत्र दे रहे हैं? भले हमको अगर वाणी से सेवा करने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन सबसे बड़ी सेवा तो बाबा कहते हैं मनसा सेवा है, और मनसा सेवा बहुत बड़ी सेवा है वो, क्योंकि वाणी तो दिखाई दे रही है, वाणी में स्वयं को बिजी रखना आसान काम है, लेकिन हमको कह दिया जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, दो घंटे खाली योग ही करना, मनसा सेवा करनी है, तो कितना भारी पड़ जाता है, क्योंकि वो दिखाई तो नहीं दे रही है, वो तो हमको स्वयं को पता चलता है। तो इस देह में रहते हुए भी अपने मन को कौन कौन से संकल्पों में बिजी रखना है, ताकि हम इस देह से डिटैच रहें, वो भी हमको स्वयं के ऊपर नजर रखने की जरूरत है। हाँ जी, निमित्त भाव, हाँ निमित्त है, हम इस देह में निमित्त समझकर हमको कर्म करना है। हाँ, उस स्थान भी हमारा वो निमित्त है, वो परमानेंट नहीं है, निमित्त है, हम उसको संभालने के निमित्त हैं। फिर हमको ये भी स्मृति रखनी है कि हम बेहद के सन्यासी हैं। बाबा ने कहा वो तो हद के सन्यासी क्या करते हैं, घरवार को छोड़ के चले जाते हैं, और तुम क्या करते हो, तुम तो संसार को छोड़ के चले जाएंगे। बेहद की संसार में रहते हुए बुद्धि हमारी बेहद में रहे, तो सन्यासी जैसे 3 दिन से ज्यादा नहीं ठहरते, जो आजकल तो ठहर जाते, लेकिन पहले उनका नियम है 3 दिन से ज्यादा एक स्थान पर नहीं ठहरते। तो हमको भी इस देह में ज्यादा से ज्यादा नहीं ठहरना है, सारे दिन में स्थूल वाला स्थान तो दिखाई दे रहा है, लेकिन देह में आने जाने का उपक्रम हमारा जारी रहना चाहिए, अप डाउन, यहां वहां यहां वहां, तो ताकि हम सन्यासी की तरह, सन्यासी जहां किसी का उससे लगाव नहीं है, ना उसकी बुद्धि लौकिक में जाती है, ना कोई धंधे में जाती है, और उनको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज भी हम देखते हैं कोई कोई सन्यासी ऐसे हैं, वो भोजन के लिए कुछ मांगते भी नहीं है, उनके पास अपने आप भोजन आता है। या हम जाते हैं नादरा पॉइंट में, रास्ते में क्या है, जंगल में कुटिया, हम सवेरे डेली देखते हैं लोग उनको देने जाते हैं, वो कभी उसको बाहर नहीं देखा हमने। तो हम सन्यासी हैं, सन्यासी का भी लगाव किसी से नहीं होता है। हाँ, ये अभी आएगा, अभी घर लास्ट में जाएंगे ना, पहले काम तो पूरा कर ले, घर तो जाने जाने। नेक्स्ट हम हैं बहते पानी की तरह है। पानी अगर खड़ा हो जाता तो क्या हो जाता है, सड़ जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, उसको यूज दुर्गंध मारता है, अनेक प्रकार की मक्खी मच्छर बीमारियां पैदा होती हैं। तो अगर हम भी बहते पानी की तरह रहें तो बहते पानी की विशेषताएं होती है, पानी बहते बहते कहां समा जाता है, वो नदी सागर में चली जाती है। संडे की मुरली में था ना, तुम नदियां भी सागर में समा जाएंगे। हाँ, बहते पानी में सब हाथ धुले, खड़े पानी में नहीं करेंगे। तो अगर हम बहते पानी की तरह रहते हैं तो अनेक आत्माओं को ज्ञान का स्नान करा सकते हैं, प्यास बुझा सकते हैं। अगर हम खड़े हो जाते हैं अर्थात सड़ जाते हैं फिर, अर्थात हम अगर हम अपने मन बुद्धि को चलाते नहीं है, मुरली सुनी वहीं के वहीं रहेगी, अर्थात वो खड़े हो गए। अगर मुरली सुन के अगर हम उसको चिंतन में लाते हैं, आपस में करते हैं, चर्चा करते हैं, गाय की तरह उगारते हैं, आज की मुरली में था ना, गाय की तरह उगारना है, तो इस ज्ञान का चिंतन करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, उगारते रहते हैं, मंथन करते हैं। उस दिन था मुरली में, मंथन करने से क्या फायदा होता है, बाबा कहते हैं मंथन करेंगे तो नई नई टचिंग आएगी, नई नई टचिंग होगी तो उमंग उत्साह रहेगा, उमंग उत्साह रहेगा तो उसकी सफलता मिलेगी, सफलता के मंत्र। सफलता का फिर संडे की मुरली में भी था, सफलता कैसे मिलेगी, बाप और मैं की स्मृति, ये स्मृति का स्लोगन वरदान के रूप में अनुभव करते रहेंगे तो सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता तुम्हारा तुम्हारे गले में माला के रूप में पिरोई हुई है। हाँ जी, सफलता के सितारे हैं, आज भी सितारे थे, कौन से आय के वरदान में, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के साथी बन, आगे साथी बन, रूहानी ज्ञान सितारे, ऐसा था रूहानी ज्ञान सितारे होबा, दिन को रात नहीं, रात को दिन बनाने वाले ठीक बोला, अटेंशन तो जाता ना ऐसे। तो बाबा ने कहा कि उस तरह से अपने आप को चमकाते रहना है, बाकी हम एक पंछी की तरह है, उड़ता पंछी है ना, पंछी दिन पूरा होता है तो शाम को अपने घर की ओर लौटता है, तो घर वापसी की स्मृति, जैसे बताया इन्होंने कि अब हमको घर जाना है तो घर की स्मृति रहती है, तो बहुत सारी बातों को, चाहे वो ऑफिस का काम हो, चाहे वो हम दोस्तों से मिल रहे हों, या कोई बिजनेस कुछ भी कर रहे हों, यात्रा कर रहे हों, शाम को जब लौटते हैं तो सारी घर की स्मृतियां ताजी हो जाती हैं। कल भी बताया था ना बाबा ने मुरली में, जब बच्चे घर जाते तो खुश होते हैं, बैग बैगेज थे, और संडे के मुरली में था कि खुश होते, झाड़ नजर आने शुरू हो जाते हैं, तो हमको भी परम धाम के झाड़ नजर आने चाहिए, स्वर्ग के, स्वर्ग तो वो अपने आप आ जाएंगे, पहले घर में तो पहुंचे हाँ बाबा कहते एक सेकंड में, क्या एक सेकंड में, एक सेकंड में तैयारी होनी चाहिए, सोचा और गए, हाँ एक सेकंड में अगर लेट हो गए तो उधर से बम काम कर देगा अपना तो बैग बैगेज हमेशा तैयार रहे, ऐसा ना हो कि उसमें हमारा सेंटर, हमारे जिज्ञासु, हमारे बच्चे, हमारी ये प्रॉपर्टी रहेगी, उस समय कुछ भी याद नहीं आना चाहिए, बताओ कितनी बड़ी साधना है। अगर हमारे पास कुछ पड़ा हुआ है और वो भी हमको याद आ गया तो भी बाबा कहते गए रह जाएंगे, तो भी हमको स्मृति रखने के भी घर वापसी का समय है, इसलिए उन बातों को भी हमको पकड़ नहीं रहे, हम उड़ते पंछी की तरह हैं। फिर दूसरा एक दे के जो धर्म की बात थी या दे की भाषा, इसमें भी आता है अगर हम भाषा कौन सी है, अगर हमारे अंदर ही अंदर भी चल रहे हैं देह को देखते हुए कि ये तो बहुत सुंदर है, इसके तो कपड़े बहुत अच्छे हैं, या ये एक रूप है, या इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं, अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, तो ये भी वास्तव में हमारे पुरुषार्थ के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। हाँ भाषा ऐसी हो, बोल ऐसे हो जो रिकॉर्ड करने वाले हों, वैराग्य दिलाने वाले हों, नपे तुले हों, सार युक्त हों, सुखदायी हों, दूसरों को प्रेरित करने वाले हों, दूसरों के पुरुषार्थ को तेज करने वाले हों, दो ठंडे ठाकुर उनको थोड़ा गर्म करने वाले हों, ऐसे बोल हमारे होने चाहिए, उमंग उत्साह वाले बोल होने चाहिए। तो वो जो ये बोल सारे भाषा के अंतर्गत आते हैं, तो उससे भाषणा आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो बोल किसी को और ही ठंडा कर दे। इस दुनिया में कुछ भी मेरा नहीं है, इस दुनिया में कुछ भी मेरा नहीं है, और यहां कोई मेरा नहीं है, सब अपने अपने लगे हुए, और लगना भी ऐसे चाहिए, ऊपर जाना है तभी तो वैराग्य ठीक रहेगा, तो यहां कोई अपना नहीं है, ये सभी मेरे ही हैं, वो हाँ वो मेरा है, वो एक और भी कहने में आता है, कहा जाता है जियो तो ऐसे जियो जैसे सभी अपने हैं, और जियो तो ऐसे जियो जैसे अपना कोई नहीं है, तो यह भी इसमें आता है। और वैराग्य की परिभाषा आती है कि ये देह मिट्टी है और सार संसार असार है, ये भी एक वैराग्य की परिभाषा है, तो हमको देखना है, क्योंकि जब तक हमारा वैराग्य मजबूत नहीं है तब तक हमारा पुरुषार्थ भी तीव्र नहीं होगा, तो वैराग्य हमारे श्रेष्ठ पुरुषार्थ का आधार है, नींव है, और ब्राह्मण जीवन का एक इमारत है, अगर इसको अचल अड़ोल रखना है तो ये निरंतर हमारा धधकता रहना चाहिए। और वैराग्य एक तलवार की तरह है, अगर वैराग्य के तलवार पर धार है तो हम बंधनों को काट सकते हैं, अगर वैराग्य हमारा ठीक ठाक नहीं है, धारदार तलवार जैसा नहीं है, तो वो हमको बंधन बांध के रखेंगे, तो ये वैराग्य एक तलवार की तरह है। और वैराग्य है तो हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकते हैं, नहीं तो इंद्रियों के वश में आत्मा उन्हीं सुखों की तरफ आकर्षित होती रहती है दिन प्रतिदिन। वैराग्य पवित्रता को निखारने का सहज साधन है, वैराग्य देह से डिटैच होने का आधार है, बेस है, हाँ सुख, अतीन्द्रिय सुख का साधन है। वैराग्य सेवा की सफलता का साधन है। जब तक हमको संसार से वैराग्य नहीं है तब तक इस ईश्वरी सेवा में सफलता उतनी अनुपात से मिलती नहीं जितनी अनुपात से हमको मिलनी चाहिए। वैराग्य सहज योग का मार्ग प्रशस्त करता है। वैराग्य है तो हमारा योग सहज हो जाएगा, और वैराग्य नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि, वैराग्य तो होता है, वैराग्य वास्तव में हर एक होता है लेकिन उल्टा हो जाता है, ज्ञान से वैराग्य हो जाता है, योग से वैराग्य हो जाता है। तो हमको वो देखना वैराग्य कौन सा है। हाँ, खुद हम खुद को पहले देखना है। वो अगर जो सामने वाला कर रहा है तो कमी हमारे में है कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसे भी होता है अगर लंबे समय से कोई व्यक्ति ज्ञान में चल रहा है और देख रहे हैं उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो जो देख रहा है वो भी व्यक्ति देखता है कि इनके जीवन में परिवर्तन तो आ ही नहीं रहा है, तो हमारे वैराग्य में कहीं ना कहीं कमी है, जो उसको संकल्प नहीं आ रही यहां आकर्षण होने के, इसलिए वो उन चीजों में लगे हुए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं दूसरे की गलती को भी अपनी गलती समझ के चलो। तो कहीं ना कहीं गलतियां हमारे में हैं, तभी तो दूसरों को प्रेरित नहीं हो रहे। क्यों नहीं उनका खून खोल रहा है? क्योंकि हमारा खून ही ठंडा पड़ा हुआ है। हाँ, ज्ञान का वैराग्य है, वही ना, उल्टा काम हो जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं मान लो हम 10-15 साल से अच्छी साधना कर रहे हैं और 2 मिनट में कोई ऐसा बोल निकल गया जो वो भी लोगों ने हमारे से अपेक्षा नहीं रखी होगी, नहीं सुना होगा, तो उनके मन में क्या आएगा? छोड़ के चले जाएंगे वो। तो खैर वो अलग बात है कि उनका ड्रामा में पार्ट ऐसा है, लेकिन फिर भी निमित्त तो हम बने ना कहीं। उनको अगर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी से हमने वंचित कर दिया, भगवान के वर्षे से वंचित कर दिया, भगवान के वरदानों से वंचित कर दिया, तो कहीं ना कहीं हमारे पर भी दोष आएगा ना। इसलिए सबसे पहले हमें स्वयं को देखना है, अगर हमारे आसपास के लोग हमारे से जो वासना उनको करनी चाहिए, अनुभूति करनी चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं, तो हमको अपनी साधना को और प्रखर करने की जरूरत है, अपने वैराग्य की और तीव्र करने की जरूरत है। हमको स्वयं जांच करनी होगी कि कहां कहां हमारी रगें जुटी हुई हैं, उस स्थान से, उस भाषा से, या उस देह के धर्मों से, या बहुत सारी चीज, देह के संबंधों से, साधनों से, संस्कारों से, वो कहीं ना कहीं हमारी रगें जुटी हैं। इसलिए उनसे हमको निकलने के लिए खुद ही अपने आप को शक्तिशाली बनाना है।
मन से वैराग्य करना, दूसरा फिर मजबूर से वैराग्य करना।
हाँ,
आपने इतने गुलाब जामुन खाए, गुलाब जामुन से वैराग्य आ
गया। हाँ, एक मजबूरी से होता है, एक मन से होता है। तो मान लीजिए अगर कोई मजबूरी से कर रहा है और वो चाहता है मुझे मन से वैराग्य है, तो उसके लिए क्या किया जाए? वैसे हर एक को चाहता तो है कि मुझे मन से वैराग्य आना चाहिए, तो क्या किया जाए? अगर मन से चाहना तो हो, लेकिन चाहना तो है लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो जहां चाहे वहां रहा है, उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि लंबे समय के बाद कोई हिसाब किताब ऐसे जो हमको खींच रहे बार बार, लेकिन जैसे वो बंधन टूटेगा एकदम तुरंत उड़ जाएंगे। होता ना, कईयों को देखते हैं कि लंबे समय से ज्ञान में चल रहे हैं, नहीं परिवर्तन, लेकिन कोई ऐसा मूवमेंट आता है कि वहां से सेकंड में परिवर्तन रहता है।
जबरदस्ती बांध के
रखता, हाँ, जबरदस्ती बांध के रखता, वो वास्तव में हमारे पिछले कर्म भी हमको बांध के रखे हुए हैं। अभी तो हम छूटना चाहते हैं, अभी जबरदस्ती इसलिए हमको लग रहा है कि कोई छूटना तो चाहते, संकल्प तो छूटने का है ना। तो हमको पुराने, हमने भी लाइफ में अपने एक बार अनुभव किया हुआ है, ये पुरुषार्थ तो अच्छा करते हैं लेकिन हमको कहीं ना कहीं वो योग में रस नहीं आता था, लेकिन किसी ने हमको वो उस बात के लिए हमको कटाक्ष किया, कुछ किया, और वहां से वो चीज हमारी खत्म हो गई। तो वो हमारे कहीं ना कहीं हिसाब किताब होते हैं, तो हमको इसमें बहुत पेशेंस, धैर्यता, लंबे समय के इंतजार करना पड़ता है, कौन सा वो क्षण आता है, उस क्षण में सारे बंधन खलास हो जाते हैं, और वहां से फिर जो मन की चाहना तो थी, जो हमको, जिसको हम मजबूरी से कर रहे थे, लेकिन वो मजबूरी भी फिर सहज रूप में परिवर्तन हो जाती है। अब सवेरे उठते हैं, कोई कोई भले मजबूरी से उठ रहे हैं, लेकिन वो मजबूरी भी अंदर में उनका भाव कुछ और है, अंदर से तो मन से उठ रहे हैं ना। अगर जिसको मजबूरी से उठना होता तो फिर उठता क्यों मजबूरी से? मजबूरी अर्थात मन में है कि मुझे परिवर्तन होना है, लेकिन समय आएगा वो, इसलिए उसको, क्योंकि धरने में अगर बीज बोते हैं तो सब बीज के जो फलीभूत होने का टाइम अपना अपना होता है। इस धरनी में लाखों करोड़ों बीज पड़े हैं, लेकिन जैसे बारिश होती है तो सारे अंकुरितों के बाहर आते, कितनी हरियाली हो जाती है, जैसे हम देखते हैं कुछ भी नहीं दिखेगा इन पहाड़ियों में, कुछ भी नहीं होगा, और जैसे बरसात आएगी तो अंदर धरती भी नहीं दिखेगी। तो इसी तरह से कहीं ना कहीं हमको थोड़ा, इसलिए बाबा कहते हैं अंत तक इस ज्ञान को, इस अमृत को पीते रहना है। अंत की अवस्था का आपका गायन है, शायद आज की मूल्य में है, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो, आज या फिर आने वाले काल में होगा। तो ये अंत तक ज्ञान अमृत पीना है, तो मजबूरी लगती है हमको, मजबूरी है, लेकिन वास्तव में मन से चाहते हैं जो हमको मजबूरी के रूप में दिखाई दे रही है, मजबूरी है नहीं है। मजबूरी में ब्राह्मण कोई नहीं टिकेगा इतना। हाँ, जो मजबूरी में वो चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे। अगर लंबे समय के बाद, हाँ जी, मजबूत नहीं हो सकता वो तो मजदूर की तरह मजबूरी करेगा, मजबूरी से चलेगा। तो वास्तव में हमारे इस ज्ञान में बहुत पेशेंस रखने की जरूरत है, लेकिन हमारे मेंटेलिटी होती है कि जल्दी से तुरंत परिवर्तन हो जाए। जल्दी से होने वाला नहीं, लंबे समय के अभ्यास के बाद थोड़ी सी अनुभूति होगी। 10-20 साल लग सकते हैं, थोड़ा सा अनुभव होगा, फिर और 20 साल। अब बताइए, दादियों ने इतने लंबे समय से साधना की है, कितनी पेशेंस है, कितनी धैर्यता है। जो बाबा ने कहा दिवाली नहीं आएगी, कितनी दिवालियां बीत गई, फिर भी चल रहा है। आज दादी में उमंग उत्साह देखो, कितना उमंग उत्साह, फिर भी पुरुषार्थ के प्रति उनकी कितनी अंदर में तीव्र इच्छा है। जानकी दादी डेली शाम को क्लास कराते हैं, आज की डेट में भी शांतिवन में अभी भी कितनी उनकी पिपासा, अभी भी एक जिज्ञासु की तरह अभी भी वो ज्ञान को सुनते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते इस ज्ञान मार्ग में बहुत धैर्यता की जरूरत है। जैसे बाबा धैर्यता का सागर है, ऐसे हमको भी धैर्यता की, बहुत धैर्यवत बनने की जरूरत है। तो कुछ एक बातें थी जो हमको स्थान से वैराग्य, देह के धर्मों से वैराग्य, देह की भाषा से वैराग्य, क्योंकि इस ज्ञान मार्ग में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो पुरुषार्थ भी बहुत महीन होता जाएगा और माया भी बहुत महीन रूप से आती जाएगी। तो हमको पुरुषार्थ की महीनता में जाने के लिए ऐसे अपने अंदर महानता के लक्षण धारण करने पड़ेंगे, तो हम इस ब्राह्मण जीवन का अच्छी तरह से अनुभव कर सकेंगे। तो ये कुछ एक बातें थी जिसको हम अपने जीवन में अमल में लाना है। बिल्कुल बिल्कुल, अटैच रहते बताया ना उसको, हमको इस ज्ञान से ही हमारा वैराग्य जागृत होगा। जितना हम इस ज्ञान में डूब जाएंगे तो उस संसार की तरफ हमारी नजर नहीं जाएगी। हम ज्ञान के समुद्र के बजाय ऊपर ऊपर रहते ना, तो हमारी वहां आकर्षण रहता है। ज्ञान के समुद्र में डूब जाएंगे तो फिर रत्न आएंगे, ऊपर आएंगे तो मछली आएगी, सीधी सी बात है। बाबा ने उस दिन कहा था ना मुरली में, तो हम ऊपर ऊपर रहते हैं, सारे जो भी वैराग्य नहीं पैदा हो रहा है, यहां कहें हमारी लगाव है, तो इसका सारे सार यही कहेंगे कि ज्ञान में हम ऊपर ऊपर तैर रहे हैं, इसलिए वो सारी चीजें आकर्षित कर रहे हैं। ज्ञान की गहराई में नहीं जा रहे हैं, गहराई में जाएंगे तो ऊपर नजर नहीं आएगा। बाबा कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देते हैं। तो हमको जबरदस्ती इस ज्ञान में डुबोना पड़ता अपने आप को, और फिर धीरे 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 उस ज्ञान से प्यार हो जाएगा, क्योंकि पता उस ज्ञान से हमारा फायदा होने वाला है। बाबा ने कहा ना, स्मृति में है फायदा, विस्मृति में घाटा, उस दिन साकार मूल्य में था। तो देखिए, अगर उस वहां हमारी कल्याण की वृत्ति है, एक है दो तरीके से, एक है कल्याण के कारण हमारा मन वहां जा रहा है बार बार, तो ठीक है। दूसरा है उस कल्याण में कहीं ना मोह ना लग, मोह की रगे ना हो। एक है मोह के कारण हमारा मन वहां जा रहा है, हमारे परिवार का भी कल्याण हो जाए या हमारे गांव का भी कल्याण हो जाए। बाबा कहते आप अपने गांव के बजाय देश का क्यों नहीं सोचते, आप पूरे संसार का क्यों नहीं सोचते, आप बेहद हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नेचुरली है वो तो। भारत, बाबा ने कहा पूरा संसार भारत ही था पहले, तो जहां हम जाते हैं वो तो हमारी एक जिम्मेवारियां बनती है, लौकिक में जाना पड़ता है, वो तो नेचुरली है, जहां रहेंगे जाएंगे। आज ही बाबा ने कहा तुमको रिश्तेदारों में जाना है, कपड़े कौन कहता है तुमको बदलने के लिए, कपड़े पहनो वही पहनो। हमारी अंदर की वृत्ति कैसी है, हम उस तरीके से तो नहीं जा रहे हैं उस तरीके से। हाँ, सब कुछ अंदर की बात है। बाबा ने कहा किसने कहा तुमको कपड़े पहनो, कैसे भी कपड़े पहनो, लेकिन अंदर की वृत्ति कैसे, अंदर में हमारे क्या ज्ञान बोशाले मार रहा है, ज्ञान का चिंतन चल रहा है, गाय की तरह ज्ञान को उगार रहे हैं हम। बाबा ने बाबा कहते ना बूंद बूंद ज्ञान का टपकती रहनी चाहिए, उछलाती रहनी चाहिए। तो उस लौकिक को भी हमको लौकिक ही नहीं समझना है, अलौकिक समझ के रहना है। वो तो हमको सेवा के साधन मिले हुए हैं, लेकिन लौकिक भी बुद्धि में ऐसे बैठे हुए छूटते थोड़े नहीं सहज, वो कितना लंबे समय के। इसलिए जो 14 साल की साधना बाबा ने कराई, तुरंत छोड़ दिया तो छोड़ दिया, वो बहुत बड़ा स्टेप था वो तो, क्योंकि बाबा को पट्टी तैयार करनी थी। लेकिन आज की डेट में वो करना, ये तो अपने दम पर ही, अपने बलबूते पर, अर्थात बाबा का वरदान तो हमारे ऊपर है ही है, लेकिन इस ज्ञान को हमको, उस समय तो ज्ञान भी इतना क्लियर नहीं था जब ये सारा कुछ यज्ञ की स्थापना हुई, कितना ज्ञान था, 10-15 लाइनों में ज्ञान सुनाया होगा बाबा ने। लेकिन आज देखो, आज तो ज्ञान की बाढ़ आ चुकी है, ज्ञान की सुनामी है, लेकिन इस सुनामी हम बह जा रहे हैं, लेकिन इसमें हमको उसी में डूब के हमको अपने जीवन का परिवर्तन करने के अपने अपने, क्योंकि हर एक का कर्म क्षेत्र अपना है, हर एक के संबंध संपर्क अपने अपने हैं, हर एक की सहभागिता अपने अपने हैं, रिश्तेदारियां संबंध अपने अपने हैं, तो उसमें हमको खुद ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो क्षेत्र है वो आपको अच्छी तरह से उसके अनुभव ही है, उसके हम अनुभव नहीं है, इसलिए आप उसमें ज्यादा सोच सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं हर समस्या का समाधान मुरली में मिलता है, लेकिन उस पर को हम पूरी तरह से एकाग्र होकर सुनेंगे तो सचमुच कहीं ना कहीं हमको रास्ते निकल आते हैं। वो बताया ना, जहां चाह वहां राह है, तो चाहना हमारी तो है, लेकिन वो राह कब मिलेगी इसकी हमको प्रतीक्षा करनी है। हाँ, तो विश्व कल्याणकारी अर्थात हदों में बंधने वाले नहीं, स्टेट के नहीं, देश के नहीं, गांव के नहीं, समाज के नहीं, पूरे विश्व के। तो इन स्मृतियों के साथ अगर मरेंगे तो हम हमारा वैराग्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। ओम शांति।
सबसे अच्छी भाषा प्रेम की भाषा, नैनों से झलकती संकल्पों की भाषा, नैनों से झलकती संकल्पों की भाषा। जग जैसे कांटों का जंगल, जहाँ प्रेम स्वर्ग वहीं पे जैसे माँ का चल। आ प्रेम बिना जग जैसे कांटों का जंगल, जहाँ प्रेम स्वर्ग वहीं पे जैसे माँ का चल। प्यार मिले मानो क्या, प्यार मिले मानो क्या, हर प्राणी चाहता। प्यार मिले मानो क्या, हर प्राणी चाहता, प्राणी चाहता। नैनों से झलकती संकल्पों की भाषा, नैनों से झलकती संकल्पों की भाषा।